लूका 8वां बाब। थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और युआना हेरोदीस के दीवान खुजा की बीवी, और सुसन्ना और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि
एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया।
ये कहकर उसने पुकारा,
जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।
उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि
ये तमसील क्या है।
उसने कहा,
तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है, राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। कोई शख्स चराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और जहूर में ना आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है।
फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच न सके, और उसे खबर दी गई कि
तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं।
उसने जवाब में उनसे कहा कि
मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा,
आओ झील के पार चलें।
बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि
साहेब, साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं।
उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का, और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा,
तुम्हारा ईमान कहाँ गया?
वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि
ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं।
फिर वो ग्रासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यसू को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा,
ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अज़ाब में ना डाल।
क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बयाबानों में भगाए फिरती थी। यसू ने उससे पूछा,
तेरा क्या नाम है?
उसने कहा, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर गईं और गौल कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यसू के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं कपड़े पहने और होश में यसू के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और ग्रासीनियों के गिर्दोनवाह के सब लोगों ने उससे दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यसू ने उसे रुखसत करके कहा,
अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए।
वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यसू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। जब यसू वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यसू के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यसू ने कहा,
वो कौन है जिसने मुझे छुआ?
जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि
ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं।
मगर यसू ने कहा कि
किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है।
जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा,
बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा।
वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि
तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे।
यसू ने सुनकर उसे जवाब दिया कि
खौफ न कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी।
और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा,
मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है।
वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा,
ए लड़की, उठ।
उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यसू ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना।